हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन और मैं आपकी अपनी दोस्त आरजे जिमी। तो दोस्तों, पता है आज स्टूडियो में मैं अकेली नहीं आई हूँ। आज मुझे स्टूडियो में हर तरफ शिक्षा का माहौल दिख रहा है। आप ऐसा जानना चाहेंगे कि ऐसा मुझे क्यों महसूस हो रहा है या ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, तो आइए आपको बताते हैं। क्योंकि स्टूडियो में आज मौजूद हैं नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज से एचओडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आशु त्रिपाठी मैम, लेक्चरर सुबेंद्र वर्मा सर, लेक्चरर हीरालाल वर्मा सर, लेक्चरर अर्जुन कुमार चौबे सर। तो मैम, एचओडी मैम से हमारा पहला सवाल रहेगा, मैम हमें ये बताइए कि शिक्षा शास्त्र होती क्या है।
थैंक यू जिमी, आपके यहाँ स्टूडियो में मतलब हमें बुलाने के लिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज में आज एजुकेशन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। शिक्षा शास्त्र, जैसे कहा जाए शिक्षा क्या है, तो शिक्षा को हम किसी एक उसमें नहीं बांध सकते हैं या शिक्षा की कोई एक निश्चित अर्थों में नहीं कह सकते कि शिक्षा क्या है। शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षा गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है, जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है तभी से उसका सीखना शुरू हो जाता है और आजीवन मतलब मरते दम तक उसकी शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है। शिक्षा एजुकेशन सब जो है, ई और ड्यू को दो शब्द से मिलके बना है। ई का अर्थ है आंतरिक और ड्यू को का अर्थ होता है बाहर लाना। मतलब शिक्षा का ये है कार्य कि बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर लाना। बच्चे के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसके अंदर एक शक्ति है या उससे उसकी जिज्ञासा है, उन चीज़ों को शिक्षा बाहर लाने का कार्य करती है। शिक्षा को किसी एक अर्थ में हम नहीं बांध के रख सकते हैं।
जी मैम, हमारा अगला सवाल जो है वो डॉक्टर सुबेंद्र वर्मा सर से है। सर, हमें ये बताइए कि शिक्षा की उपयोगिता क्या है।
जैसे मैम ने भी बताया कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन हमारे समाज में ये धारणा बनी है कि शिक्षा को हम केवल एक निश्चित चार दीवारी के अंदर ही सीख सकते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से हम सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और रही बात यदि इसकी उपयोग की, तो शिक्षा के द्वारा यदि किसी भी विषय का यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा के बहुत सारे जो तौर तरीके हैं, शिक्षण की विधियाँ हैं, शिक्षण के सूत्र हैं, शिक्षण की तकनीकी है, उसका इस्तेमाल करना होता है। वो चाहे मानविकी विषय हो या समाजशास्त्र का विषय हो या कोई अन्य तकनीकी विषय में भी, हम शिक्षा शास्त्र के जो सूत्र बताए गए हैं, जो तरीके बताए गए हैं, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इसके उपयोगिता के बारे में बात किया जाए तो हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो हम जब अपने अकादमिक स्तर को पूरा करना चाहते हैं या शुरू करते हैं तो उसमें हर एक विषय के लिए शिक्षा शास्त्र के जो तौर तरीके हैं या शिक्षण की विधियां हैं, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरा, यदि हम इसको प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत इसका प्रयोग या उपयोग देखना चाहें तो उसमें सबसे ज़्यादा यदि शिक्षा शास्त्र की उपयोगिता है, तो यदि अब हर स्तर के शिक्षक यदि आपको बनना है तो उसमें शिक्षा शास्त्र विषय की महती भूमिका होती है। जैसे यदि आपको बेसिक स्कूलों में शिक्षक के पद को प्राप्त करना है तो उसमें शिक्षा शास्त्र विषय को आप उपयोग में ला सकते हैं। यदि माध्यमिक शिक्षा में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको शिक्षा शास्त्र विषय को पढ़ना होगा, उसके तकनीकों को, उसके विधियों को इस्तेमाल करना होगा। और यदि हायर एजुकेशन में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए भारत सरकार ने एक पात्रता परीक्षा का आयोजन करती है भारत सरकार समय समय पर, जिसको जो है हम नेट के नाम से जानते हैं। उसमें जो फर्स्ट पेपर होता है, जो सभी विषयों के लिए कॉमन पेपर होता है, उसमें शिक्षा शास्त्र एक ऐसा पेपर है जो लगभग पूरे फर्स्ट पेपर को कवर करता नजर आ रहा है।
जी सर, तो दोस्तों आपने ये जाना। बाकी अब मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि शिक्षा का संबंध किससे है, जो कि हम जानेंगे लेक्चरर हीरालाल वर्मा सर से। तो आइए सर से जानते हैं कि शिक्षा का संबंध किससे होता है।
थैंक यू जिमी, शिक्षा का संबंध कई विषयों को शिक्षा अपने आप में समेटे हुए है, इसीलिए शिक्षा शास्त्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो जाता है। शिक्षा शास्त्र में दर्शन, मनोविज्ञान, सृजन शास्त्र और तमाम विज्ञान जो हैं ऐसे हैं जो उसके अंदर आ जाते हैं, या कहिए कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसको शिक्षा शास्त्र अपने में समेटे नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो मोक्ष प्राप्त करना था, बट जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसके उद्देश्य परिवर्तित होते गए और आज शिक्षा का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ जीविकोपार्जन का साधन भी है। इसीलिए वर्तमान समय में शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा के साथ भी जोड़ दिया गया है और दर्शन और मनोविज्ञान इसके मुख्य दो अंग। दर्शन की सहायता से हम सत्य को तर्क के माध्यम से साबित करते हैं या सत्य को तर्क की कसौटी पर साबित करते हैं और फिर मनोविज्ञान की सहायता से हम बच्चों के मनोभावों को समझ करके उसे अपने विचारों को उसके सम्मुख रखते हैं। उसके पहले मनो को समझना है, उसके मन मस्तिष्क को समझना है। शिक्षा शास्त्र हमें ये बताती है कि बच्चों को ज्ञान देने से पहले उसे ज्ञान लेने के लिए तैयार कैसे किया जाए। जब तक हम उसके मनो को भावों को नहीं समझेंगे तब तक हम शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए शिक्षा शास्त्र का अध्ययन शिक्षक बनने के लिए बहुत ही जरूरी है और भारत सरकार ने ऐसे प्राविधान बनाए हैं कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको शिक्षा शास्त्र पढ़ना है। इसके लिए जो है आपकी BTC की ट्रेनिंग होती थी, इसका नया नाम बदल के DLED कर दिया गया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद में फिर BEd की ट्रेनिंग होती है, फिर MEd की ट्रेनिंग होती है और इसमें केवल शिक्षा शास्त्र के बारे में बताया जाता है कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो क्या क्या चीज़ें जाननी है। दर्शन भी पढ़ना है, मनोविज्ञान भी पढ़ना है, यहाँ तक कि विज्ञान की एक नई शाखा जुड़ी सुजनन शास्त्र, जिसको सुजननिकी भी कहते हैं, इसके जनक फ्रांसिसी गाल्टन हैं। इन्होंने तो बुद्धि के आधार पर शिक्षा शास्त्र के माध्यम से देश के विकास के बारे में एक बहुत ही बढ़िया योजना प्रस्तुत की, लेकिन उसे लागू नहीं किया जा सका भी। और इस प्रकार जो है शिक्षा शास्त्र सभी विषयों को अपने आप में समेटे हुए है।
थैंक यू सर, हमारे सवालों का इतनी खूबसूरती से आपने जवाब दिया। सर, अगला सवाल जो मेरा है वो लेक्चरर अर्जुन कुमार सर से है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आजकल की शिक्षा है या यूं कह लें कि जो वर्तमान काल की शिक्षा है वो प्राचीन काल से अलग कैसे है या प्राचीन काल में कैसी शिक्षा नीति चलती थी, ये इसके बारे में जरा हमें कुछ बताइए सर।
थैंक यू जिमी मैम। पहले जो विचारधाराएं प्राचीन काल में चल रही थी वो वैदिक काल, बौद्ध काल, मुस्लिम काल से थी। जैसे हम शुरुआत में जब शिक्षा प्राप्त करते थे तो गुरुकुल के माध्यम से अर्थात उपनयन संस्कार होता था। उसके बाद धीरे धीरे हम शिक्षा में प्रवेश करते थे। धीरे धीरे मॉडर्न एज में आते गए, आगे बढ़ते गए, मुस्लिम काल में आए, उससे पहले बौद्ध काल में आए और आज आधुनिकीकरण में है। क्योंकि उस समय हमारी जो प्रगति थी वो इतनी तीव्र नहीं थी जितनी आज है। यदि आने वाले दिनों में हम इतनी प्रगति नहीं करेंगे तो दूसरे देश से हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें इस आधुनिकीकरण के दौर में अपने आप को बदलाव लाना है। जैसे और देश शिक्षा में होड़ कर रहे हैं उसी तरह हमको भी एक नई विचारधाराओं पर जोर देना है, जिसके कारण हम आने वाले दिनों में अपनी प्रगति कर सकें। नई शिक्षा नीति 2020 इस समय लॉन्च है, जिसकी शुरुआत 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट में मंजूरी मिली, जिसका विचार सबसे पहले के कस्तूरी रंगन के मन में आया, जो इसरो के प्रमुख या अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ये विचारधाराएं हमारे मन में इसलिए आईं क्योंकि आज आधुनिकीकरण के दौर में हम अपने देश की प्रगति चाहते हैं और प्रगति तभी हो सकती है जब हम और देशों की अपेक्षा अपनी तेज दौड़ लगाएं और वो हमारी शिक्षा कर सकती है। क्योंकि कहा गया है विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, ये सभी धनों में प्रधान है और हम इस ज्ञान को, अपनी शिक्षा को, अपनी विद्या को ग्रहण करके कहीं ना कहीं अपना देश तो विकसित करेंगे ही, अपने समाज, अपने राष्ट्र को विकसित करेंगे और यही राष्ट्र विकसित होकर के समाज को एक नया मोड़ देगा।
थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमें समझाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे सवालों को आपने बहुत खूबसूरती से समझाया। आइए HOD मैम से हम उनके विचार जानते हैं।
मैं अपने महाविद्यालय के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ।
जी मैम,
जैसे इस महाविद्यालय में हम शुरू में आए थे 2002 में, BEd का एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरा यहाँ पड़ा था
जी।
और उसके बाद फिर ये कॉलेज मेरे लिए लकी ही निकला क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम एक ही बार में हमने वो क्वालिफाई कर लिया, हमको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिला। फिर उसके बाद जब हम 2013 में आए फिर हमने यहाँ ज्वाइन किया एक प्रोफेसर के रूप में आके यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ में बहुत ही ज़्यादा सहयोग हमको इस कॉलेज से प्राप्त हुआ। मतलब जो चीज़ें हम नहीं भी जानते थे कि ये कैसे होता है, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें एक योग्यता कह लें या ऐसी कैपेसिटी कह लें कि हमारे अंदर विकसित हो गई कि आज के समय में मतलब पूरी मीडिया को संभालना, जबकि पहले थोड़ा भय भी लगता था कि हाँ कैसे हम मीडिया वालों से बात करेंगे, कैसे क्या करेंगे, लेकिन कॉलेज के काम कहिए या ऐसी जिम्मेदारी हमको दी गई कि उस जिम्मेदारी को भी हमने बहुत अच्छे से देखा और आज मेरे अंदर से वो भय भी चला गया। शुरू में और लास्ट में जैसे कहा जाए, तुलना की जाए, तो शुरू में बचपन मेरा जो है बहुत ही वैसे उसमें एक स्वतंत्र विचारों में बीता, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे गवर्नमेंट जॉब में थे और बाहर ऑफिसर थे हाइडल में वो, और धीरे धीरे जब आए हम गोंडा में शिफ्ट हुए, फिर गोंडा के विचारों से प्रभावित हो, फिर ऐसा कॉलेज देखा कि जहाँ महिला शिक्षा को उस समय कोई भी वो नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस कॉलेज का जन्म नाम सुना कि 3 लड़कियों से ये कॉलेज शुरू हुआ था और आज ये कॉलेज ऐसे उस बेस पे पहुँच गया है कि यहाँ एक FM स्टेशन भी चलना शुरू हो गया है। तो इस कॉलेज में रहना एक सौभाग्य की बात है और इन्हीं के साथ मैं आपको धन्यवाद बोलती हूँ कि यहाँ हमें बुलाया।
थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपके विचारों से हमें रूबरू आपने कराया, हमें बताया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का पूरे बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे सभी सवालों के जवाब बहुत खूबसूरती से हमें समझाए और अपने विचारों से हमें रूबरू कराया। मिलते रहेंगे एक नए सेशन के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ और कहीं मत जाइए, सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।